Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe. Radhe Shyam, Radhe Shyam, Shyam Shyam, Radhe Radhe. Jai Jai Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe. Radhe Shyam, Radhe Shyam, Shyam Shyam, Radhe Radhe. Shyam Shyam, Radhe Radhe, Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe. Radhe Shyam, Radhe Shyam, Shyam Shyam, Radhe Radhe. Shyam Shyam, Radhe Radhe. Jai Jai Shyam Shyam, Radhe Radhe. Radhe Radhe, Radha Krishna Bhagavan Ki Jai. Sadgurudev Bhagavan Ki Jai. सच्चिदानंद भगवान की जय. सनातन धर्म की जय. स्वामी श्री ब्रह्मपुरी जी महाराज की जय. ओम नमः पार्वती पतये हर हर. श्रीमद् भागवत महापुराण में तृतीय स्कंद के अंतर्गत कपिल उपाख्यान श्रवण कर रहे हैं आप. सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्ति हृत्करण रसायना कथा तज्जोषणादात तज्जोषणात अश्वपवर्ग वर्तमने श्रद्धा रतिर्भक्तिर अनुक्रमिष्यति. जैसे संतों का वर्णन किया ऐसे संतों का अगर आप साथ करते हो, भगवान कहते हैं कि आपके चित्त के अंदर में परमात्मा के प्रति लगाव उत्पन्न होता है. कल मैं कह रहा था आपको कि जब तक हमने अपने मन को परमात्मा चिंतन का कोई आधार ही नहीं दिया तो हमारा मन करेगा भी क्या. हम अपने मन से कैसी अपेक्षा कर सकते हैं कि हमारा मन भगवान का ध्यान करे. तो भगवान के ध्यान में क्या करे हमारे मन को पता नहीं होता है. एक सज्जन हमको मिले, कहने लगे महाराज हम भगवान की पूजा कैसे करें, भगवान की पूजा कैसे करें. उन्होंने हमको कहा तो मैंने कहा कि पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि आप भगवान की पूजा करना क्यों चाहते हो. अपने को स्पष्ट करो पहले. अगर आप कहो कि हम तो उन्होंने कहा बात समझ में नहीं आई. हमने कहा समझना क्या, भगवान की पूजा आप किस लिए, भगवान को पाने के लिए करना चाह रहे हो या संसार को पाने के लिए करना चाह रहे हो, संसार को दिखाने के लिए करना चाह रहे हो, वो बताओ. तो कहने लगे संसार को दिखाने वाली बात तो नहीं जमी, लेकिन संसार को पाना और परमात्मा को पाना दोनों हो ऐसा बताओ कि दुनियादारी भी बनी रहे, घर में सुख शांति भी रहे और भगवान के प्रति प्रेम भी हमारा उत्पन्न हो, ऐसी पूजा की पद्धति बताओ. तो मैंने कहा दोनों चीजें बड़ी मुश्किल है, एक ही हो सकती, दोनों हो सकता है. स्वामी राम ने एक जगह लिखा है कि इंद्रियों की तृप्ति और परमात्मा की प्राप्ति ये दोनों एक साथ में नहीं हो सकते. अच्छा आप एक ही समय पर पश्चिम में मुंह करके खड़ा हो, पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ तो आप सूर्योदय का दर्शन कर सकते हो, मुश्किल है, हो ही नहीं सकता. और ये दोनों ही विपरीत धाराएं हैं कि जहां ये रहेगा वहां वो नहीं रहेगा, जहां वो रहेगा वहां ये नहीं रहेगा. आप परमात्मा चिंतन करोगे तो संसार खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. मुझे याद है कहीं मैंने सुना और बड़ी बढ़िया बात सुनी कि रावण के पास भगवान श्री राम के साथ युद्ध होने लगा, रावण का भयंकर युद्ध हुआ और उसमें रावण को लगा कि पराजित हो रहे हैं. तो किसी ने जाकर के रावण से कहा कि तुम बड़े पागल हुए हो, शायद ब्रह्मा जी ने कहा, पक्का नहीं मालूम है मुझे। तुम बड़े पागल हो, बोले क्यों? तो कहा सीता जी के लिए इतने नाटक कर रहे हो तुम, सीता जी को पाने के लिए इतने युद्ध लड़ाई करने की जरूरत क्या है? तुम तो सारी विद्याओं में पारंगत हो, तुम्हें तो बहुत कुछ आता है। अगर सीता जी को पाना ही तुम्हारा मात्र उद्देश्य है तो तुम तो राम का रूप बना सकते हो, और राम का रूप बना करके सीता जी के पास में पहुंच जाओ, मैं तुम्हारा वरण कर लेंगे। तो रावण हंसने लगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा हंस क्यों रहे? बोले हंस इसलिए रहे कि आपको क्या लगता है कि ऐसा मैंने नहीं सोचा था, ये उपाय मेरे से छूट गया था, मेरे मन में भी आया था कि मैं ऐसा करूं, तो फिर तुमने किया नहीं? बोले किया। बोले फिर क्या हुआ? तो रावण ने जो बात कही वो बड़ी विचित्र है। रावण ने कहा कि मैंने भी यही सोचा था कि राम का रूप बना करके सीता के पास पहुंच जाऊंगा और सीता को प्राप्त कर लूंगा, सीता मुझे वरण कर लेगी। जिसका आपको रूप बनाना पड़ता है, जिसका रूप आपको बनाना है, जिसके रूप में आपको बदलना है, उसका आपको चिंतन करना पड़ता है। तो मैंने भी राम का रूप बनाने के लिए कि मैं राम के रूप में परिवर्तित हो जाऊं, राम का चिंतन किया। फिर बोल बस वही मुश्किल आ गई कि जब मैंने राम का चिंतन किया तो सीता क्या, सारा ब्रह्मांड मुझे तुच्छ नजर आने लगा। जब राम का मैंने चिंतन किया तो फिर ब्रह्मांड में कुछ भी पाने की इच्छा ही नहीं रही मेरी। यह है कि जहां आप राम को अंदर लेकर के आओगे तो संसार की कामनाएं वासनाएं तो अपने आप मिट जाएंगी, अपने आप समाप्त हो जाएंगी। आप कोशिश भी करो तो भी नहीं बचेगा। इसलिए भागवत आप सुनते हो, ध्रुव के सामने भगवान प्रकट हुए और भगवान ने कहा कि मांगो। और आपको कहानी मालूम है, कहानी से आप परिचित हो कि वे ध्रुव संसार को पाने के लिए ही भगवान के पास गए थे, संसार की प्राप्ति को लेकर के ही, कि राज सिंहासन हमें मिल जाए, कि राजगद्दी हमें प्राप्त हो जाए, इसलिए भगवान के पास में गए। अर्थार्थी भक्तों के अंतर्गत आते हैं ध्रुव। लेकिन भगवान का जब दर्शन किया, भगवान ने कहा कि मांगो क्या चाहते हो? तो कहा सही बोलूं? बोले हाँ। बोले पहले इच्छा थी, अब नहीं है। आपको देखने के बाद अब संसार को पाने की अभिलाषा नहीं, पहले थी। ये सही बात है, ये सच है कि जब तक आपको नहीं देखा था, जब तक आपसे नहीं मिला था, तब तक संसार के प्रति मन में कामना थी। लेकिन आप आ गए, आप मिल गए, अब कोई अभिलाषा नहीं। और ये बात साबित करता है कि ध्रुव ने भगवान को देखा, ये बात साबित करती है कि ध्रुव ने भगवान को प्राप्त किया, कि परमात्मा को प्राप्त करने के बाद भी संसार को पाने की अभिलाषा बनी रहे, तो इसका मतलब है कि या तो उसे धोखा हुआ है या वो झूठ बोलता है, दोनों ही बातें हो सकती हैं। या तो जानबूझ करके झूठ बोलता है या फिर उसे धोखा हुआ है, उसकी समझ में नहीं आया कि यथार्थ क्या है, सत्य क्या है। विभीषण के मामले में भी यही है कि उनके मन में भी कहीं कोई भावना रही कि लंका का राज्य मुझे मिले, लेकिन भगवान का दर्शन करने के बाद वे भी कहते हैं कि नहीं महाराज, अब इच्छा नहीं। तो परमात्म प्राप्ति की जहां कामना पूरी हो जाए, संसार फिर कहां कोई मायने नहीं रखता। तो मैंने उस सज्जन से कहा कि पहले तुम्हें निश्चय करना पड़ेगा। अच्छा, ऐसी वृत्ति के लोग ज्यादा हैं जो ये कहते हैं कि दोनों बने रहे, ऐसी वृत्ति के लोग, ऐसे चिंतन के लोग अधिक हैं जो ये मानते हैं कि अगर दोनों ही चीजें बनी रहे तो बहुत अच्छा है, कि घर भी बना रहे वो भी न बिगड़े और परमात्मा की कृपा भी बनी रहे। तो सामान्य रूप से तो परमात्मा की कृपा बनी ही हुई है, परेशानी कहां है, झंझट कहां है, थोड़ी तो बनी। लेकिन अगर आप उस परम शांति को, जो ये शरीर, परम शांति का मेरा तात्पर्य मात्र इतना है कि ये शरीर जिसके लिए आपको मिला वो प्राप्त करने की अगर अभिलाषा है, तो थोड़ा ज्यादा आपको भाव चुकाने पड़ेंगे। स्वामी राम ने एक बात और एक जगह और बहुत बढ़िया बात कही कि आदमी चाहता तो ब्रह्म बनना चाहता है। मनुष्य से पूछो क्या करना चाहते हो, बोले ब्रह्म होना चाहते, मैं ब्रह्म हूं इसकी खोज करना चाहते हैं। तो इतनी बड़ी बात चाहता है, अखिल कोट ब्रह्मांड अधिनायक परात्पर तत्व परब्रह्म परमात्मा को सामने मूर्त रूप में देखना चाहता है, कहता है कि मैं दर्शन करना चाहता हूं। लेकिन जब कीमत चुकाने की बात आती है तो सब पीछे हट जाते हैं। चाहते हैं हम इतनी बड़ी बात, चाहते हैं हम इतना बड़ा फल, लेकिन जब मेहनत की बारी आती है, जब समर्पण की बारी आती है, जब कीमत चुकाने की बारी आती है, तो कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आता। और स्वामी राम की ये बात बिल्कुल यथार्थ है, सत्य है। अगर किसी से पूछो आप कि तुम्हें क्या चाहिए, तो हम बोल तो देंगे कि हमारी अभिलाषा ये है, हम बोल तो देंगे कि हमारी इच्छा ये है, लेकिन जब कीमत चुकाने की बात आएगी और तब हमारे मन में आएगा कि नहीं नहीं, ये उलझने, छोटी छोटी बातों में हम परेशान हो जाते हैं, छोटी छोटी चीजों में हम उलझ जाते हैं, और इन उलझनों के साथ हम ये विचार करें और हम चिंतन करें कि भगवान हमको मिल जाएगा, तो भगवान फ्री में नहीं बैठा है महाराज। भगवान के पास भी काम है इस दुनिया को बनाने के, संभालने के, संवारने के। परमात्मा भी ऐसा नहीं है कि कोई काम नहीं है, हमारे लिए ही बैठा है कि वो हमारे पीछे पीछे घूमे कि आए। घूमेगा, घूमने में भी उसे आनंद आता है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देता देखा। ये परमात्मा की प्रेम, परमात्मा प्रेम को महत्व देता है, ये इस बात के साबित करती है उनकी लीलाएं, उनकी घटनाएं, उनकी कथाएं, ये साबित करती हैं कि जब जब किसी ने प्रेम किया तो वे भगवान उनकी प्रेम की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए तरह तरह के रूप बना करके इस धरा पर प्रकट हुए आए। लेकिन हम बिना कीमत के हम चाहते हैं कि हमें करना कुछ न पड़े और भगवान आ जाए और कहें कि जागो बेटा, हम तुमको दर्शन देने के लिए आए। कैसे संभव हो सकता है? तो हमारे अंदर में कीमत चुकाने की भावना आनी चाहिए। मैंने उन सज्जन को कहा कि पहले आप निश्चित करो तो मैं बताऊं कि आप पूजा कैसे करनी चाहिए। आप करो और बस उसके बाद में आपकी जीवन और आपका जिंदगी सफल हो जाए। तो उन्होंने कहा कि ये निश्चय तो मैं नहीं कर पाऊंगा कि कैसे हो, और मैं आपसे भी यही निवेदन करूंगा कि आप पूजा करने की विधि जानना चाहते हो, आप पूजा करने का ढंग जानना चाहते हो, तो स्पष्ट करो अपने दिल को, अपने मन को, अपने चित्त को कि वास्तव में आप भगवान की आराधना क्यों करना चाहते हो, क्यों कर रहे हो, क्यों करते हो। और यदि भगवान के प्रति समर्पण भाव है, परमात्मा पाने की अभिलाषा, एक महात्मा तो ताल ठोक के बोलते थे कि मैं विश्वास दिलाता हूं, गारंटी देता हूं कि कोई भगवान को दर्शन करना चाहता है मैं करवाऊंगा, लेकिन उसके लिए समर्पण करने के लिए तैयार हो, वैसी धारणा लेकर के तुम आगे बढ़ने की हिम्मत तो दिखाओ। तो तुम्हारे अंदर अगर भगवान को पाने की अभिलाषा है तो मुझे लगता है कुछ करने की जरूरत कहां है। छोड़ो सब, सारी चिंताएं छोड़ दो, सारी जितनी भी दिमाग में बातें आती हैं उनका परित्याग करना शुरू कर दो। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, छोड़िए आप और फिर देखिए। क्यों? क्योंकि तब तब जब जब आप संसार की कामनाओं को मन में लाने की कोशिश करोगे अथवा आएंगी कामनाएं, और तब तब आपको ये बात याद आएगी कि नहीं नहीं, हमारा उद्देश्य ये नहीं, हमारा उद्देश्य तो ये है, हमारा लक्ष्य तो ये है। तो आप पहले अपना लक्ष्य तो निर्धारित करो, आपको पता तो होना चाहिए कि आप कहां जा रहे हो। और एक कहानी मैं सुनाया करता हूं अपनी ही घटना कि बेंगलोर में था मैं और मैं ऐसी भटक रहा था, कहां जाना है मुझे नहीं पता था। तो चौराहा आता है, तो चौराहे पर मैं पहुंचा, मुझे मालूम नहीं था कि रास्ता किधर जाते हैं। तो मैंने किसी आदमी से पूछा कि रास्ता किधर जाता है, तुझे बताना चाहिए था नहीं बताना चाहिए था? मैंने पूछा तुझे बोलना चाहिए ना कि ये रास्ता कहां जाता है, लेकिन उसने नहीं बताया, वो नहीं बोला। उसने हमसे कहा देखो लोग भी ऐसे हैं, और सिखा दिया उसने, उपदेश कर दिया। मैंने पूछा कि रास्ता किधर जाता है, तो उसने जवाब दिया कि आपको कहां जाना है, वो हमसे पूछ रहा है। तो उसने जवाब दिया, यही बोल रहा था ना, हाँ उसने, हमने पूछा कि रास्ता कहां जाता है, तो वो ये नहीं बताता कि रास्ता कहां जाता है, वो कहता है कि आपको कहां जाना है वो बोलो। अब मैं उलझ गया क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था कि कहां जाना है। मेरा उद्देश्य, मेरा लक्ष्य निर्धारित नहीं था, मैं अनभिज्ञ था रास्तों से, मैं खाली रास्ते के बारे में। आज दुनिया में लोग ऐसे ही हैं, संसार के लोग ऐसे ही हैं, जो रास्तों के विषय में तो जानना चाहते हैं कि महाराज जरा बताओ कि ज्ञान मार्ग कैसा है, कि महाराज जरा बताओ कि भक्ति मार्ग कैसा है, उपासना कैसे होती है, कि कर्मकांड कैसे होता है, कि हवन कैसे होता है, जरा कपालभाति भी सिखा दो, वो भी आना चाहिए, मालूम पड़े कि कोई पूछे तो हमको, हम कह सकें कि हाँ हमको वो भी आता है, ज्यादा बनो मत। आपको कहने की जरूरत नहीं, बोलने की जरूरत नहीं, हमने वो भी सीखा है। तो हम खाली रास्तों के विषय में जानना चाहते हैं, हम हमारे मन में ये ज्ञान होना चाहिए, हमें पता हो। एक सज्जन से हमने पूछा कि कथा सुनने क्यों जाते हो, बोले मालूम पड़ता है कि महात्मा लोग क्या क्या बोलते हैं तो ज्ञान होता है, पता चल जाएगा, ताकि हम किसी चीज से अनभिज्ञ न रहे, ताकि हमें सब ज्ञान रहे, ताकि हमें सब बोध रहे। तो हमें सब बोध रहे इसलिए हम सुनने जाते हैं, हमें लेना देना कुछ नहीं है, हमें जाना कहीं नहीं, कोई अभिलाषा नहीं। अगर ये धारणा है, अगर ये भावना है, तो निराशा हाथ लगेगी। और वही होता है हमारे साथ में कि हम कितना भी सुने, कितना भी श्रवण करें, हमें कुछ परिणाम नहीं मिलेगा। यहां पर भगवान कपिल कहते हैं सताम प्रसंगान मम वीर संविदो, तो महात्मा लोग मेरे पराक्रम का वर्णन करेंगे, मेरी कथाओं को कहेंगे, मेरी लीलाओं को कहेंगे, लेकिन उसका परिणाम हमें कब मिलेगा, जब हम उन लीलाओं का चिंतन उसको प्राप्त करने के लिए करेंगे, हम अपना लक्ष्य निर्धारित करेंगे। हमें पता होना चाहिए कि हम यहाँ क्यों बैठे हैं। देवहूति ने इस कथा को श्रवण करना शुरू किया तो माता जी श्रवण कर रही हैं, लेकिन उनको पहले पता है कि हम यहाँ क्यों बैठे हैं। सारी दुनिया को उन्होंने देख लिया, और मुझे लगता है कि जितना माता देवहूति ने अपने जीवन में अनुभव किया है, हम भी उन अनुभवों से गुजर चुके हैं। हमने भी वो संसार की लीलाएं देखी हैं, हमने भी रसगुल्ले खाए हैं, पता है कि स्वाद कैसा है। हमने भी संगीत सुना है कि उसका रस कैसा है। हमने भी रूप देखे होंगे आंखों से जो देवहूति ने अनुभव किए, लेकिन वे उन अनुभवों से आगे बढ़ी, वे उन अनुभवों से बहुत दूर निकल गई। उन्होंने जान लिया कि कितना भी तुम देख लो, इन देखने में कोई सार नहीं, कितना भी तुम सुन लो, इस सुनने में कोई आनंद की अनुभूति ऐसी नहीं होने वाली कि मन कहे कि अब कृतकृत्य हो गए, अब कोई अभिलाषा नहीं। वो तो अनुभव कर चुकी है, वे तो कह चुकी है कि हम तो जी लिए जितना जीना था। हमने अनुभव कर लिया कि संसार की ये वासनाएं, संसार की अभिलाषाएं कितनी भी पूरी करती जाओ ये पूरी नहीं होती, नए नए विषयों को लेकर के और आगे बढ़ती, नई नई तमन्नाएं, नई नई आशाएं प्रकट होंगी, और इंद्रियां अपनी अपनी इच्छाओं को नए नए रूपों में लेकर के आएंगी, लेकिन ये आंखें कभी नहीं कहेंगी कि बस बहुत हो गया, अब हम देखना नहीं चाहते। इस अनुभूति के साथ वे श्रवण कर रही हैं, इसलिए वे तो जो भी सुनेंगी तो संसार के प्रति तो उनका कोई भाव रहेगा ही नहीं, संसार के प्रति तो कोई कामना रहेगी ही नहीं। और हमारी स्थिति उलट है, विपरीत है कि सब कुछ देखने के बाद भी संसार ही मूल रूप में हमारी धारणा में बसा हुआ है, भावना में बसा हुआ है। तो जहां कहीं भी परमात्मा की बात आएगी तो भी हमारे अंदर में श्रद्धा कब होगी? हमारे अंदर में श्रद्धा तो तब होगी जब मन में ये भाव पैदा हो, मन में ये पक्का निश्चय हो जाए कि हम भगवान की पूजा करें तो घर में कोई विघ्न ना आए। एक सज्जन को किसी महात्मा ने कहा कि तुम जाओ भगवान की पूजा करो, भगवान तुम्हारी ऊपर कृपा करेंगे, प्रसन्न होना। अब वो मंत्र लेके गए और पूजा करने लगे, जप करने लगे, तो संयोग से कोई बीमार पड़ गया घर में। अब बीमारी तो आ ही सकती है कभी, वे दौड़े दौड़े भागे भागे आए और महाराज से कहा, महाराज कैसा मंत्र बता दिया कि हमारा लड़का बीमार पड़ गया। अब मंत्रों से अगर लड़का बीमार पड़ने लगे, आप भगवान की पूजा कर रहे हो और घर में लड़का बीमार पड़े और आप महात्मा से शिकायत करो, ये बात मेरे पल्ले नहीं पड़ती। तो आप ये चाहो, आप ये सोचो कि हम भगवान का जप करें और हमारे घर में बीमारी ना आए, तो भगवान को तो आपने नौकर बना दिया कि खबरदार जो आप बीमारी आई, तो अगर आई तो आपको घर से बाहर कर देंगे, आपको हम निकाल करके छोड़ देंगे। ये कोई धारणा नहीं है पूजा की, ये कोई धारणा नहीं आध्यात्मिकता की। वहां तो संसार अहमियत रखता ही नहीं है, भक्त तो ये सोचता है कि शरीर का जो भी प्रारब्ध है वो प्रारब्ध हमें भोगना ही है, भोगेंगे। और चाहे जिस अवस्था में आए, क्या संतों ने नहीं भोगे, क्या ग्रस्तों ने, जो ग्रस्तों ग्रस्त आश्रम में रहने के बाद भी भगवान के भक्त रहे, भगवान की आराधना किया, क्या उनके जीवन में प्रारब्ध नहीं आया? और भगवान भी स्वयं अवतार ग्रहण करके और ये संदेश देते हैं कि देखो हम यहाँ आए और हमें भी अपने जीवन में दुखों को भोगना पड़ा, तो तुमको भी यही सीखना चाहिए, शिक्षा लेना चाहिए। और कहीं पर भी आप दृष्टि घुमा करके देखो, जहां जहां नजर डालोगे वहां वहां आपको यही नजर आएगा कि प्रारब्ध के वशीभूत होकर के सब परेशान हुए, तो फिर क्यों चिंता करना? उन रोगों से परेशान होने की क्या जरूरत है? परेशान यानी ऐसा नहीं कि रोग हो तो आप बैठे रहो, उनका निवारण करो, लेकिन चित्त के अंदर में कोई परेशानी न हो, ऐसी धारणा मन में रख करके अगर आप कथा श्रवण करते हो तो कहा कि मन के अंदर में परमात्मा के प्रति प्रीति उत्पन्न होती है, जागती है। भगवान कहते हैं, भक्त्या पुमान जो वितराग इंद्रियात, भक्त्या पुमान जात विराग इंद्रियात, दृष्ट श्रुतान मद्र रचनानुचिंतया। जो कुछ महात्मा लोग कहते हैं, कथा कहते हैं, श्रवण करवाते हैं, और वे लीलाएं आप सुनो और सुनने के बाद में उनका चिंतन करो। कल भी शायद मैं यही निवेदन कर रहा था कि आप ध्यान में भगवान की लीलाओं को देखो। ध्यान भी अनेकों प्रकार का है, तो आप मुझे लगता है कि हमारे जैसे संस्कार हैं, हमारा जैसा चिंतन है, उस चिंतन और संस्कार के अनुसार मुझे लगता है कि आप जब भी ध्यान करने बैठो तो लीला चिंतन, लीला का ध्यान हमारे लिए बिल्कुल सहज हो सकता है, अनुकूल हो सकता है, क्योंकि उसमें मन के भटकने के जो चांस है बहुत कम रहते हैं, मन जाएगा कहां। और मैंने तो संतों से सुना कि भगवान का अवतार इसीलिए हुआ कि मन आंख किसी रूप को देखने की अभिलाषा करती है कि कुछ देखें, तो भगवान के रूप को देखो, भगवान तो इतने सुंदर हैं, उनको अगर आपकी आंख देखने लगी तो संसार के सारे रूप फीके पड़ जाएंगे। संत तो ऐसा कहते हैं कि आप उस रूप को देखो ना जो सबसे सुंदर है। और कहानियां आपने सुनी होंगी, रामानुजाचार्य जी महाराज के जीवन में मैंने ऐसा सुना कि कहीं मेले में वो बैठे हुए थे और एक भक्त, रास्ते से नाम भूल रहा हूं, एक भक्त रास्ते से गुजर रहा था। भक्त क्या, एक बहुत विषयी व्यक्ति, और इतना विषयी धनाढ्य था, इतना विषयी कि वो अपनी प्रेसी को, प्रेमिका को साथ में लेकर उस मेले में से निकला। तो इतना आसक्त था उसके रूप पर कि जब वो मेले से निकला तो छाता लगा करके ऐसे आ रहा था और खुद उल्टा चल रहा था ऐसे, और उसको देख रहा था सामने ऐसे छाता लगा के, ताकि उसका रूप, उसका चेहरा दिखता रहे, विपरीत जा रहा। और महाराज जी ने जब देखा तो चकित रह गए कि संसार में ऐसे भी आसक्त लोग हैं, वो तो सोच भी नहीं सकते। तो आश्रम के, उनके कैंप के सामने से, कुटिया के सामने से जब निकला तो उन्होंने इशारा करके लोगों से कहा कि इसको बुलाओ। जब किसी ने कहा जाकर कि आपको महाराज जी बुला रहे हैं, तो वो भी चकित रह गए, डर गया थोड़ा सा कि कहीं महाराज जी डांटे नहीं। लेकिन डरते डरते पास में गया तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, शाम को हमारे यहाँ पूजा आरती होती है तो तुम वहां आ जाना, पहुंच जाना, आरती में सम्मिलित हो जाना। तो उसने सोचा था कि महाराज डांटेंगे, लेकिन महाराज तो बिल्कुल नाराज नहीं हुए, क्रोधित नहीं हुए। उन्होंने कहा कि शाम को पूजा में तुम्हें खाली पहुंचना है। और मैंने सुना कि उन्होंने अपने भगवान से कहा, महाराज जी ने, रामानुजाचार्य जी महाराज, कि ये आएगा, बड़ा आसक्त पुरुष है, इसको देख करके बड़े हृदय में दुख होता है हमारे, इसलिए बस जब आए तो आप अपनी थोड़ी सी झलक इसको दिखा देना। आपका रूप, ये रूप के ऊपर आसक्त है, मर रहा है, थोड़ा सा अपनी झांकी दिखा देना, ताकि पता तो चले कि आसक्त रूप कहाँ है, रूप की महिमा तो मालूम पड़े इसको, कहाँ भटक रहा है इसे ज्ञात तो हो। तो शाम को आरती में आया, महाराज जी ने कहा कुछ नहीं, भगवान को देखते रहो, खाली खड़े हो जाओ। तो ये तो अंदर से डर रहा था, पहले ही घबराया हुआ था, पहुंचा तो जरूर, लाइन में खड़ा हो गया, भगवान को देख रहा था डरते डरते। और जैसे ही भगवान ने अपनी उस छवि को दिखाया, ये तो बेहोश हो गए। इतना सौंदर्य, इतना सौंदर्य हम तो कल्पना ही नहीं कर सकते, हम तो सोच ही नहीं सकते। और बस चरण पकड़ लिए महाराज के, कुछ भी हो अब तो आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए, ये रूप कैसे मिले हम, इसको कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, एक झांकी तो हमने देखी है लेकिन कैसे प्राप्त कर सकते हैं ये बताइए। हमारे महाराज जी ने जब ये कहानी सुनाई थी, हमारे गुरुदेव भगवान ने, उन्होंने हमसे कहा कि महाराज ने पूछा कि तुम जरा बताओ कि जो तुमने रूप देखा है, जिसको पाने की तुम अभिलाषा कर रहे हो मन में, और जिसके तुम प्रति तुम आसक्त थे, उन दोनों रूपों में तुलना करने के लिए कहा जाए तो तुम किसको पसंद करोगे, अथवा थोड़ा तुलना करके बताओ कि कौन ज्यादा सुंदर है। तो महाराज, तुलना तो हो ही नहीं सकती, समझाऊं कैसे। हाँ, जिस रूप की छटा को हमने थोड़ा सा देखा है और उसके अनुपात में अगर मैं अपनी प्रेमिका को रखूं, तो मुझे लगता है कि जिसको मैंने देखा है उसको स्नान करवाने के बाद अगर मैल निकाला जाए थोड़ा सा भी, और उसकी अगर मूर्ति बने तो वो ज्यादा सुंदर होगी उस हमारी प्रेमिका से। हाँ, इतना अंतर हमें लगता है मेरी बुद्धि के अनुसार, उसकी कोई तुलना ही नहीं हो सकती। तो भगवान तो इसीलिए प्रकट हुए, भगवान अपने सौंदर्य को लेके इसीलिए प्रकट हुए, ताकि संसार में जितने भी उनके चाहने वाले हैं वे उनको देख सकें, और एक बार अगर उनको देख लिया संसार के सारे रूप फीके पड़ जाएं। तो ये लीलाएं, ये कथाएं इसीलिए हैं कि हम ध्यान करने बैठे, जब हम पूजा करें, जब हम अर्चना करें, जब हम पाठ करें, जब हम जप करें, तब भगवान की उन लीला चिंतनों को करके अपने मन को समझाएं कि तुम कौन से रूप को पाना चाहते हो, देखो तो सही। ऐसे भगवान कृष्ण जो प्रकट हुए, सारी गोपियां उनके प्रति रीझ गईं। रुक्मिणी जी कहती हैं कि जो भी सात्विक बुद्धि है, जिसकी, जिसका हृदय शुद्ध है, जिसके हृदय में पवित्रता है, वो आपको ही वरण करेगी, ये वे स्वीकार करती हैं। तो अपने मन से हम भी कह सकते हैं कि इसका मतलब हमने अगर भगवान को वरण नहीं किया, भगवान को स्वीकार नहीं किया, तो ऐसा लगता है कि शायद हमारा मन अभी पवित्र नहीं हुआ। तभी तो ऐसा होता है कि हम भगवान को स्वीकार नहीं कर पाते या भगवान के प्रति हमारा चित्त नहीं लगता है। और यह भी सत्य बात है कि अगर हमारा अंतःकरण शुद्ध हो गया तो परमात्मा के प्रति समर्पण अपने आप ही होगा। इसलिए जितना हो सके, जो कुछ भी हम श्रवण करते हैं भगवान की कथाएं, जो कुछ भी श्रवण करते हैं भगवान की लीलाएं, उनका हम चिंतन करें, लीला चिंतन करें, ध्यान करें, देखें कि वो कैसे ठुमकते हैं, देखें कि वो यशोदा की गोदी में कैसे बैठते हैं, देखें कि वो कैसे मक्खन खाने के लिए और दूसरी गोपी के घर में चोरी करने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने धीरे से दरवाजा खोला कि बस अंदर में प्रवेश कर गए, मटकी में हाथ डाल करके बैठे हुए हैं। जितनी भी भागवत में आपने लीलाएं श्रवण किए, बड़े बड़े महापुरुषों से श्रवण किए, हमेशा श्रवण करते हैं, प्रेमपुरी में तो हर साल कितनी सारी कथाएं होती, आप श्रवण करते हो और प्रत्येक संत महापुरुष अपने चिंतन के द्वारा, अपने अनुभव के द्वारा उन लीलाओं को अलग अलग तरह से कहते हैं। कई महात्मा नई नई लीलाएं भी लेकर के आते हैं, उन्होंने अपने चिंतन में ध्यान में नई नई लीलाएं देखी। एक संत को मैंने सुना, वो तो केवट लीला आपने सुनी है, केवट लीला, तो केवट लीला श्री रामचरितमानस में है, लेकिन उन संत से मैंने सुना कि उन्होंने कृष्ण कथा में केवट लीला सुनाई और बड़े प्यारे ढंग से सुनाई। और वृंदावन में मैं था तो मैंने तो रासलीला में वो केवट लीला देखी और इतना आनंद आया कि मैं क्या कहूं। तो महात्मा लोग, महापुरुष लोग अपने चिंतन में अनेकों प्रकार की लीलाओं का चिंतन करते हैं, अनेकों और कल्पनाएं करते हैं और ध्यान करते हैं। उन ध्यान की अवस्था में, और मेरा मानना है कि अगर आप भगवान की उन लीलाओं को देखने लगो, भगवान की उन लीलाओं को चिंतन करने लगो, तो चिंतन करते करते उन्हीं लीलाओं में आपको और अनेक कड़ियां दिखाई देने लगे, नई नई चीजें मालूम पड़ने लगेंगी, आप भी उन कथाओं के दृष्टा हो जाएंगे, देखने वाले हो जाएंगे, उन लीलाओं को देखने वाले हो जाएंगे, नए नए भाव आपके चित्त में उत्पन्न होंगे, नई नई लीलाओं की कल्पना। जैसे अगर आपने अमेरिका नहीं देखा है और आपको कोई कहे कि आपको अमेरिका जाना है, तो आप अमेरिकाओं की कैसे कल्पना करते हैं, अमेरिका की कैसे कल्पना करते हैं, कई प्रकार के, कई ढंग से चिंतन करते हैं कि वहां जाएंगे तो ऐसा होगा। चाहे अमेरिका हो, चाहे हरिद्वार हो, चाहे ऋषिकेश हो, अपने मन के भावों के अंदर में कल्पना से आप एक नए जगत का निर्माण करते हैं, नई दुनिया बनाते हैं। आपने देखा कुछ नहीं है लेकिन फिर भी आपका मन तैयार करता है और आपके मन में बड़ी प्रसन्नता होती है कि वहां जाएंगे तो ऐसा करेंगे, वहां जाएंगे तो नए नए भाव उत्पन्न होते हैं। ऐसे ही भक्त लोग करते हैं। जैसे हम और आप संसार के लोग, जब किसी चीज को पाने की संभावना रहती है तो उसको प्राप्त करने की संभावना से पहले ही उसके विषय में हम अनेकों कल्पनाएं कर डालते हैं, कल्पना जगत में खो करके और उसमें आनंदित होते रहते हैं। ऐसे ही भक्त हैं, वे भी भगवान को मिले नहीं है, उन्होंने भगवान को पाया नहीं है, उन्होंने भगवान को देखा नहीं है, लेकिन भगवान के प्राप्त होने से पहले ही वे भगवान के कल्पना जगत में खो जाते हैं, डूब जाते हैं, और उस डूबने में भी आनंद है। आपने देखा होगा कि संसार का भी जब चिंतन करते हो आप, तब उसमें भी आपको सुख मिलता है। अभी रुपया आया नहीं, लेकिन अगर आपको लगे कि रुपये आने की संभावना है, कोई लॉटरी का टिकट खरीद के लाता है, मन में सोचता है कि हो सकता है कि मैं 10 लाख रुपए मुझे मिल जाए, तो मिला नहीं है, अभी टिकट ही लिया है, हो सकता है कि वो न भी लगे लॉटरी, और ज्यादातर नहीं ही लगती है, लेकिन फिर भी आदमी कल्पनाएं करता है, डूबता है मन में कि अगर ये लग जाएगा तो मेरे पास इतना पैसा हो जाएगा, तो अगर पैसा होगा तो मैं ये करूंगा, तो मैं ये करूंगा, तो यहां चला जाऊंगा, कितनी सारी कल्पनाएं करता है और उस कल्पना जगत में कितना आनंदित हो जाता है। मुझे लगता है कि भक्तों से इनसे ही सीखना चाहिए। और गोस्वामी जी ने गलत नहीं कहा, कामी नार प्यार जिमि लोभी प्रिय जिमि धाम, जैसे वहां कंजूस आदमी, जैसे वहां वो व्यक्ति जो लोभी है और पैसा प्राप्त करने की अभिलाषा लिए बैठा है, वो जैसे सतत पैसे के बारे में सोचता है, हमेशा पैसे का चिंतन करता है। आज तक मैंने किसी को नहीं देखा कि कोई संत के पास में आया हो और वो कहे कि आप जरा बताइए पैसे का चिंतन कैसे किया जाता है, कि कौन सी किताब में लिखा है, कि कौन सा ध्यान। वो ये जरूर पूछेगा कि वो मंत्र बताइए कि पैसा कैसे मिले, ये बात समझ रहे हैं, पैसा कैसे प्राप्त किया जा सके। ये साधन तो पूछते हुए लोग मिल जाएंगे, लेकिन ये पूछने वाला कोई नहीं मिलेगा कि पैसे का चिंतन कैसे किया जाए, वो आप हमको बताओ। लेकिन यहां बात उल्टी है, यहां भगवान को पाने की तो बात ही दूर है। लोग ये कहते हैं कि भगवान का चिंतन हम करें कैसे, अब वो कैसे बताया जाए, वो मेरी समझ में आज तक नहीं आया। भगवान का चिंतन कैसे करें, ये कैसे कहा जा सकता है, भगवान का चिंतन जैसे करते हैं वैसे करें। काशिकानंद जी महाराज को मैं सुन रहा था और बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि लोग हमसे पूछते हैं कि मन को कैसे लगाएं, भगवान के भजन में मन लगता नहीं, कैसे लगाएं। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा कि नहीं लगता है, कैसे लगाएं, मतलब भजन करो मन लगाओ और क्या लगा, कैसे लगाएं का कोई उत्तर नहीं है, कोई समाधान नहीं है, और ये समस्या हमेशा बनी रही। उन्होंने कहा मन लगाने से ही लगेगा, आप करते रहिए, करिए जब, और सदैव कर दिया। हम लोग मेहनत करते नहीं, हम एक बार माला लेके बैठे और मन नहीं लगा तो उठा के रख दिया और बाद में दोष देंगे कि हमारा मन ही नहीं लगता है। तो आप कुछ करो तो सही। कई लोग देखा है, लोगों को देखा है, घरों में जाए तो लोग शिकायत करते हैं, महाराज ये बेटा बड़ा नादान है और पढ़ाई में इसका बिल्कुल नहीं मन लगता है, ऐसा है वैसा है। वो 50 कमियां उसकी निकालेंगे, ये खेलने में मन लगा रहता है, बिल्कुल किताबें उठा के, लेकिन एक बात है, रिजल्ट बहुत बढ़िया लाता है, रिजल्ट बढ़िया लाता है, लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता है। रिजल्ट पढ़ाई बढ़िया फिर कैसे लाया अगर पढ़ाई में मन नहीं लगा। और ये शिकायत करते समय वे अपने बचपन को भूल जाते हैं, अपनी कहानी भूल जाते हैं कि हम भी जब बच्चे थे और तब हमारा मन कैसा था। तो ये मन का स्वभाव, बच्चों का स्वभाव है कि वे छोटे होंगे तो स्वाभाविक रूप से खेलेंगे ही, लेकिन फिर भी आप उनको पढ़ाने के लिए बिठाते हैं, मन नहीं लगने के बाद भी उनको कहेंगे नहीं बेटा पढ़ो, तुम अध्ययन करो, आगे के जीवन के विषय में उनको समझाते हो, प्रेरित करते हो, प्रेरणा करते हो, और जब बिठाते हो तो थोड़ा बहुत पढ़ते हैं तो उनका रिजल्ट भी बढ़ आ जाता। खेलने में मन लगने के बाद भी जबरदस्ती से जब पढ़ते हैं, पढ़ने बैठते हैं, तब स्वाभाविक रूप से उनका परीक्षा परिणाम अच्छा आता है। ठीक इसी प्रकार से अगर हमारा मन नहीं लगता है तो हम अपने मन को समझाएं। मन का तो स्वभाव है कि वो नहीं लगेगा, इसी संसार में से पैदा हुआ है, भाई बंधु हैं संसार के विषय इसके, इसलिए स्वाभाविक रूप से अपने घर में जाना चाहेगा, स्वाभाविक रूप से वहां पर उसका प्रेम रहेगा, आसक्ति रहेगी, ये कोई नई बात नहीं है। और या हमारे साथ ही ये घटित हो रहा हो, ऐसा नहीं, सबके साथ यही घटित होता है। लेकिन मन को समझाएं, मन के साथ में बात करें कि मेरे मन तुम चलो, तुम्हारा परिणाम ये होगा, संसार में तुमने सारी चीजें देख ली। एक भजन है, चंचल मन तुम जाओ श्री राम ध्यान में, भगवान के ध्यान में तुमको अगर घूमना ही है, तुम चंचल ही हो तो चलो हम तुमको घुमाते हैं, भगवान के ध्यान में घुमाते हैं। कहां पर? बोले जो सब जगह रमा हुआ, जो सब जगत में, सर्व जगत में, जो सारे संसार में रमा हुआ है उसी में तुम रम जाओ, उसी परमात्मा में अपने आप को रमा लो, खेलने लगो। मन फिर भी नहीं माना तो महात्मा ने कहा अच्छा ये काम करो, संसार में तुम घूमे हो, भटके हो, इतना समय गुजर गया, इतनी जिंदगी, इतना जीवन तुमने गुजार लिया, लेकिन कभी तुम सुखी हुए, आनंदित हुए? तो कहा हाँ थोड़ा बहुत तो आनंद आता ही है, संसार में रहता ही है। हाँ, वो आनंद की परछाई है, आनंद की भ्रांति है। अगर पूर्ण आनंद की अनुभूति कहीं हुई होती तो व्यक्ति की दौड़ ही समाप्त हो जाती, व्यक्ति की क्रियाएं जो आगे चल रहा है कर्म ही खत्म हो जाते। तो दौड़ समाप्त नहीं हुई, इसका मतलब है कि पूर्ण आनंद की अनुभूति की ही नहीं, आनंद वो मिला ही नहीं। इसलिए मेरे मन हुए बहुत दिन जग में घूमत, संसार में घूमते 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 बहुत दिन हो गए, अब वहां भी घूम करके एक बार हमारे कहने से चले जाओ। संत कहते हैं मन को समझाया कि तुम्हारे कहने से हम संसार में आज तक भटके, तुम्हारे कहने से संसार में हम आज तक उलझे रहे, हमने तुम्हारी बात आज तक मानी, अब तुम हमारी एक बात मान लो, तुम्हारी बात मान करके हम जिंदगी हमने गुजार दी, लेकिन कभी भी उस अवस्था को प्राप्त नहीं हुए जिसकी कामना तुम्हें थी। तुम जिसे चाहते थे वो तुम्हें आज तक नहीं मिला, तो मेरे कहने से चलो तो सही। तो मन ने कहा क्यों चले? बोले शांति नहीं है, नश्वर जग में, ये तो संसार समाप्त होने वाला है, नश्वर है, ये किसी का नहीं हुआ, इसमें शांति कहां होगी? असत पदार्थ में सुख हो कहां सकता है, असत पदार्थ में शांति हो कहां सकती है, इसलिए छोड़ो इसको, परम शांति वहां पाओ, वहां अगर तुम चलो मेरे साथ तो वहां तुमको परम शांति मिलेगी। ऐसे मन को समझाओ, वहां मन को समझा करके भगवान के लीलाओं का चिंतन करो, भगवान के रूप का चिंतन करो, भगवान के चरण से आरंभ करके और मुखारविंद का दर्शन करो, फिर मुखारविंद से आकर के चरणारविंद का दर्शन करो। ऐसे अपने मन को एक आश्रय दो, भगवान के अवतार सार्थक हो जाएंगे हमारे लिए, हमारी दृष्टि से, क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर कृपा करके उन्होंने ऐसी लीलाएं की, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा कि उन अवतारों का लीला चिंतन करें, उन अवतारों की हम झांकी को अपने मन में कल्पना जगत में भी अगर देखते रहे तो एक दिन ऐसा होगा कि वो भगवान साक्षात हमारे सामने आ सकते हैं। लोगों को ये बात अजीब लगती होगी, लोगों को ये बातें कहानियां लगती होंगी, लोगों को बातें कल्पनाएं लगती होंगी, स्वाभाविक है, क्योंकि हमारे चित्त में, हमारे अंदर में संसार ऐसे घुसा बैठा है कि आध्यात्मिकता की कोई बात हकीकत हमें मालूम ही नहीं पड़ती। हमें लगता ही नहीं कि ये भी सही होगा, सच होगा, कि पूर्व में कभी लोगों ने भगवान का दर्शन किया, कि पूर्व में लोगों ने भगवान से संवाद किया, बातें की, हमें कल्पना लगता है। लेकिन अगर हमें अपने शास्त्रों पर विश्वास है, जो कि साधक के लिए सबसे बड़ा लक्षण, अगर हमें अपने गुरुजनों पर श्रद्धा है, तो ये सच है, मानना चाहिए कि भगवान इस धरा पर हमारे ऊपर कृपा करने के लिए प्रकट हुए, हमारी चित्त की शांति उस। अच्छा थोड़ा देखो, विचार करो कि हमने भगवान को देखा नहीं, हमने भगवान को मात्र सुना है, लेकिन थोड़ा सा देखो, विचार करो, संतों की बात यहाँ सत्य मालूम पड़ती है कि उन भगवान की हम अगर ध्यान पूर्वक थोड़ी सी कथा सुनते हैं तो चित्त में आनंद आने लगता है। भगवान की हम लीलाओं का थोड़ा सा चिंतन करते हैं तो चित्त में सुख की अनुभूति होने लगती है। तो जिन भगवान की लीला का चिंतन करने से, मात्र थोड़े से चिंतन करने से, अभी उस चिंतन में हम डूबते भी नहीं, कल्पना जगत में ही थोड़ा सा सुना और उसमें हमको इतने आनंद की अनुभूति होती है, इतना सुख मिलता है। तो जब भगवान ने लीलाएं वास्तव में की होंगी, अथवा वे भगवान अगर स्वयं साक्षात हमारे सामने आ जाए, तो संत अगर कहते हैं कि भगवान को पाने के बाद कोई दुख नहीं रहता तो कहां गलत है। अगर उनकी कल्पना हमें शांति प्रदान कर देती है, अगर उनकी कल्पना हमारे चित्त में आनंद प्रदान कर देती है, तो भगवान स्वयं प्रकट होकर के हमारे ऊपर कृपा करें तो वो क्यों नहीं आनंद हमें मिल सकता और परमानंद की अनुभूति नहीं हो सकती। तो अपने मन को लगाओ। शुरुआत किया वेदांत से, ब्रह्म विद्या से, योग आध्यात्म का पुंसाम मतो निशेषाय में, और यहां साधन के रूप में कहते हैं कि अगर कहीं तुम्हारा चित्त उस निराकार परात्पर तत्व परमात्मा का चिंतन करने में असमर्थ है तो घबराओ मत, अपने आप को अयोग्य मत समझो। ये मत समझो कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे अंदर में काबिलियत नहीं, योग्यता नहीं, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। कोई बात नहीं, अगर हम वहां तक हमारी चित्त की वृत्ति सहज रूप में नहीं पहुंच सकती तो थोड़ा हम घूम के जाएंगे, लेकिन जा तो सकते हैं। हो सकता है हमारे पास छोटी गाड़ी है, वहां ज्यादा गड्ढे हो, अथवा दूसरे तरीके का रास्ता है कि हमारी गाड़ी न निकल पाए। हमारी बड़ी गाड़ी है, वहां रास्ता छोटा है, हम न निकल पाए, तो क्या हम नहीं पहुंच सकते? हमारी बुद्धि मोटी है, ज्ञान के मार्ग में प्रवेश न कर सके, तो क्या हम वहां तक नहीं पहुंच सकते? तो महात्मा लोग कहते हैं नहीं नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। जैसी हमारी बुद्धि, जैसा हमारा चिंतन है, वैसे रास्ते हम तुमको सुझाते और बताते। साधकों के लिए संतों ने जितना किया है उतना कहा जाए उतना ही कम, जितना कहा जाए उतना ही कम है। हमें कुछ करने की ही जरूरत नहीं। कपिल भगवान कहते हैं कि आप एक काम करो खाली, एक, और वो ये है कि आप संतों के पास चले जाओ, संतों के यहां जाकर के बैठो, वे महात्मा जो आपको कहें उसको आप सुनो, दत्त चित्त होकर के सुनो, एकाग्र चित्त होकर के सुनो, और उस सुनने में डूब जाओ। जैसा कि मैंने कहा कि ऐसे सुनो कि वो दिखाई देने लगे, प्रत्यक्ष होने लगे, बस इतना आप काम करो, आगे की नीति तो अपने आप बनती चली जाएगी, आगे का रास्ता अपने आप दिखता चला जाएगा। एक बार तुम संतों के पास में पहुंच जाओ, अकेले तो ये रास्ता दुर्गम संभव हो सकता है, लेकिन महात्माओं में अगर अनुरक्ति हो जाए तो आपके सारे काम बन जाएंगे। ये धारणा हम अपने चित्त में लें, जो कुछ भी हम श्रवण करते हैं उसका चिंतन करें, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे वो साधनात्मक हो, चाहे वो भजनात्मक हो, भक्ति के रूप में हो या ज्ञान के रूप में हो, साधनों के रूप में हो, जैसा भी हो वैसा हम करते हुए और चिंतन करने लग जाएं। और सहज है, यहाँ कह रहे हैं कि जो हम लीला श्रवण करते हैं उन लीलाओं का चिंतन करें। चित्तस्य यत्तो ग्रहणे योग युक्तो यतिष्यते रुजुभिर योग मार्ग। जो कुछ भी लीला का चिंतन है, जो कुछ भी प्राप्त किया है, ऐसा चिंतन करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे। मुझे तो लगता है कि मैं सुनता तो अच्छा लगता हमारे। मैं हाँ महाराज जी बोला, थोड़ा महाराज जी बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, मेरा सौभाग्य रहेगा। सुनू मैं महाराज जी।
नारायण 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 नारायण, नमो महद्भ्य ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। परम प्रेमास्पद परमात्म स्वरूप हमारे बहुत प्यारे सखा हैं स्वामी जी महाराज, तो मेरा मन हुआ कि चलो सुने चले कपिल उपदेश। सुनने आया लेकिन आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, तो आज्ञा हुई। अभी आप सुन रहे थे लीला की बात। लीला शब्द का अर्थ होता है लीनम लाति लैनम लाति वा, जो डुबाए दे, जो हमको उनके चरित्र में डुबाए दे, मेरे मन को मेरे तन में कर दे, उसको भी कहते हैं, और छिपी हुई वस्तु को प्रकट कर दे उसको भी कहते हैं। तो लीला शब्द बहुत महत्व का है, और ये हृदय हमारा अभिमान के कारण रूप विद्या धन अधिकार इन चार अभिमानों के कारण इतना कठोर हो जाता है जैसे लाख होती है। लाख बहुत कठोर होती है, उसकी चूड़ियां पहनते हैं, लेकिन उसको जरा आग में दिखा दो तो कैसी द्रवित हो जाती है, पिघल जाती है। फिर कापी पर या कागज पर या बोरा पर कपड़े पर किसी पर लगा के ऊपर मोहर लगा दो तो वो मोहर कभी नहीं हटती है, चाहे कपड़ा फट जाए, भले ही कागज फट जाए, लेकिन मोहर नहीं हटती। इसी प्रकार से अपने कठोर हृदय में जब भगवान के दिव्य ललित चिन्मय मधुर तम नाम का, उनकी दिव्य बाकी झांकी का, उनकी ललित लीलाओं का श्रवण और धाम का आश्रय जब हम लेते हैं तो हमारा वह कठोर हृदय द्रवित हो जाता है और द्रवित होकर के उसमें नाम रूप की अपने इष्टदेव की मोहर लग जाती है। मोहर इतनी मजबूत होती है कि फिर व्यक्ति की आवश्यकता नहीं, मोहर ही काम देती है। तो हम समझते हैं आप लोगों ने तो अपने हृदय में वो मोहर लगाई है भगवान की और वो मोहर ही काम देती है। तो एक तो लीला का ये काम है, दूसरा लीला का ये काम है कि भगवान ने जो चरित्र किए हैं उनका अनुकरण होता है। जैसे प्रात काल उठके रघुनाथा मात पितें गुरु नावई माथा, तो हम भी अपने तथा और अपने संगियों को अपने परिवार वालों को ये आकर्षित करें कि देखिए परमात्मा जो प्रोड्यूसर है, जो डायरेक्टर है, वही एक्टर बन के आया यहाँ जगत में और हमको ये सिखाने आया कि देखो ऐसे करो ऐसे चलो। तो विधि और निषेध तो मनुष्य मात्र को ही है और तो किसी योनि में विधि निषेध है नहीं। तो विधि निषेध का एक नमूना देने के लिए एक्टर बन के भगवान आए, जिस परमात्मा ने ये सारी सृष्टि बनाई जन्माद्येता जिनके लिए है और स्तुतय अनुमतिर्वा है, जिसके लिए ब्रह्म सूत्र और उपनिषद और भगवत गीता प्रस्थानत्रयी सब जिनके वर्णन जिनका वर्णन करते हैं वही परमात्मा निर्देशक भी बना। तुम ये पाठ करो, तुम ये पाठ करो, तुम माता बनो, तुम पिता बनो, तुम डॉक्टर, तुम इंजीनियर, तो पाठ देने का भी वही ने काम किया और वही एक्टर भी बन गया सिखाने के लिए। तो वो जब सिखावे तो उसको आचरण में लाना चाहिए। अभी अभी स्वामी जी महाराज ने कहा बड़ी अच्छी बात थी कि हम श्रवण करें लेकिन उसको उतारें भी तो, तन भर सुनते हैं, मन भर सुनाते हैं और कन भर उतारते हैं, तो वो तो नहीं बना। जब हम सुने उस एक्टर की बात देखें कि देखो किस प्रकार से वो राज्याभिषेक की सूचना मिली और हो गया वनवास, फिर भी मुस्कान में थकान नहीं आई। श्री कृष्ण के जीवन में यदि देखा जाए इतिहास में तो सबसे अधिक संकटग्रस्त उनका श्री कृष्ण का जीवन रहा। पूरे जीवन आदि से लेकर अंत तक जानलेवा हमला होता रहा और पूरा परिवार सामने ही समाप्त हो गया, लेकिन फिर भी मुस्कान में थकान नहीं आई। तो वो परमात्मा एक्टर बनके हमको ये बताता है कि कभी आपके जीवन में संयोग से वियोग हो जाए, सम्मान से अपमान हो जाए, लाभ से हानि हो जाए, सुविधा सम्मान घट जाए, तो उसके लिए तैयार रहो। भगवान की देखो मुस्कान कैसे प्रसन्न मुद्रा में रहे। यदि ये संसार एक सागर है तो तट दो होंगे ही, ये हमारे तरफ होगा अनुकूल, दूसरी तरफ होगा प्रतिकूल। तो भाई अनुकूलता प्रतिकूलता तो जीवन में आती ही है, परिस्थिति न टालो मन स्थिति संभालो। परिस्थिति तुम नहीं टाल सकते, परिस्थिति तुम्हारे हाथ में नहीं है और मन स्थिति आपके हाथ में है। तो ये बात सिखाने के लिए वही प्रोड्यूसर वही डायरेक्टर एक्टर बनके हमको बताता है। उसकी एक्टिंग कैसी है ये लीलाओं के माध्यम से पता चलता है। जब हम श्रवण करते हैं कि एक गरीब सुदामा आया तो निहाल कर दिया, यहाँ नेता लोग गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ नारे लगाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण का देखो जीवन, उनकी आदि से लेके अंत तक आप जरा अध्ययन करें तो देखेंगे प्रत्येक लीला चिंतनीय है, विचारणीय है, हमारे जीवन के लिए प्रशस्त मार्ग देने वाली है। इतना ही हम समझते हैं पर्याप्त है। ओम शांति।
एक छोटा सा भजन सुना। हाँ हाँ।
अरे मन क्यों दीवाना है, यहाँ दो दिन का मेला है। अरे मन क्यों दीवाना है, अरे मन क्यों दीवाना है, यहाँ दो दिन का मेला है। अरे मन अकेला आया था जग में, चला जाए अकेला है। अकेला आया था जग में, चला मुट्ठी बांधे यहाँ आया, पसारे हाथ जाएगा। मुट्ठी बांध मुट्ठी बांधे यहाँ आया, पसारे हाथ जाएगा। मुट्ठी पसारे हाथ जाएगा, न धेला लेकर आया था, न जाए साथ धेला है। न धेला लेकर आया था, अरे मन क्यों दीवाना है, यहाँ दो दिन का मेला है। जवानी ढल गई तेरी, बुढ़ापा आ गया तन में। जवानी जवानी ढल गई तेरी, बुढ़ापा आ गया तन में। बुढ़ापा आ गया तन में, न जाने चूर हो किस दिन। तेरा माटी का ढेला है, न जाने चूर हो किस दिन तेरा। अरे मन क्यों दीवाना है, यहाँ दो दिन का मेला है। मनुज तन पा लिया तूने, भटक कर यौन चौरासी। मनुज तन भटक कर यौन चौरासी, मनुज तन पा लिया तूने, भटक कर यौन चौरासी। मनुज तन भटक कर यौन चौरासी, करेगा पाप यदि तो फिर नरक में ठेलम ठेला है। करेगा पाप यदि तो फिर नरक में ठेलम। अरे मन क्यों दीवाना है, यहाँ दो दिन का मेला है। अरे मन जरा अब चेत अभिमानी, न बिरथा जिंदगानी खो। जरा अब न बिरथा जिंदगानी खो, जरा अब चेत अभिमानी, न बिरथा जिंदगानी खो। जरा अब चेत अभिमानी, न बिरथा जिंदगानी खो। भजन विज्ञान कर हरि का, यही भजने की बेला है। भजन विज्ञान कर हरि का, यही भजने की बेला है। अकेला आया था जग में, चला जाए अकेला है। अकेला अरे मन क्यों दीवाना है, यहाँ दो दिन का मेला है। अरे मन क्यों दीवाना, दो दिन का। सर्वदेव भगवान की।